अब इमाम की अहादीस बयान करेंगे हम, अहादीस पढ़ें सुनें दूसरों तक पहुंचाएं, और उससे ही बढ़कर ये है कि इन पर अमल की कोशिश करें। अहादीस बयान करने से पहले एक बात ये कि अक्सर सुनने वाले ये समझते हैं कि शायद सारी जिम्मेदारी बोलने वाले की है, जिसने बयान की वो ही अमल कर ले। बोलने वाले की यानी ज़ाकरीन की जिम्मेदारी सामईन से ज़्यादा होती है, मगर ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी सिर्फ़ एक फरीक की है, जिम्मेदारी दोनों की है, अमल भी दोनों ने ही करना है। जाकिर का बोलने वाले का काम सिर्फ सुना देना नहीं, और सुनने वालों का काम सिर्फ सुन लेना नहीं, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के जिम्मेदार हैं। हमने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की अल्लाह की रहमतें बरकतें दुरूद सलाम व मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने इमाम की वसीयत बयान की थी कि वक्त आखिर इमाम ने फरमाया था कि मेरी शिफात उस शख्स के लिए नहीं जो नमाज को अहमियत ना दे। नमाज के मौजू से ही बात को आगे बढ़ाते हैं कि आयतुल्ला दस्ते गैब शिराजी अपनी किताब खाशाइन की नमाज में इमाम का ये कौल लिखते हैं कि इमाम ने फरमाया, छठे इमाम, मेरे शियों को नमाज के वक्त आजमाओ कि नमाज की किस कदर पाबंदी करते हैं। यानी अगर अहले बैत के शिया हैं तो उन्हीं की तरह नमाजों को अव्वल वक्त में पढ़कर अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुशाबहत पैदा करें। अल्लामा हाशिम मारूफ हसनी अपनी किताब सीरत आइम्मा अहले बैत में ये लिखते हैं कि इमाम ने अपने उन असहाब के लिए जो इस्लाह तबलीग का काम करते थे ये ज़रूरी करार दिया कि पहले ख़ुद अपने कौल और फ़ेल में मुताबिकत पैदा करें, यानी कौल और फ़ेल में तजाद ना हो और नेकी का नमूना बन जाएं, क्योंकि अवामुन्नास अपने रहबरों को उनके आमाल के वास्ते से देखते हैं। ज़बान पर जो अकवाल जारी रहते हैं वो आमाल से ज़्यादा पुर असर नहीं होते, इसलिए कि अकवाल तो किताबों पर दीवारों पर भी लिखे होते हैं। इमाम अपने हिसाब से फरमाते, मैं तुमको हिदायत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहो, अगर तुम्हारे पास कोई अमानत रखे तो उसको वापस दिया करो, किसी के पास बैठो तो अच्छे तर्ज अमल का इजहार करो ताकि तुम अपने बुलंद किरदार के ज़रिए लोगों में हमारे खामोश मुबल्लिग बन जाओ। असहाब ने इमाम से अर्ज़ किया कि ऐ फरजंदे रसूल, हम अगर खामोश रहे तो लोगों को अल्लाह की तरफ कैसे बुलाएंगे? इमाम ने फरमाया, हमने अतात इलाही के बारे में जो अहकाम तुमको दिए हैं उन पर अमल करो, लोगों के साथ सच्चाई और अदल से मामला करो, अमानत वक्त पे वापस दिया करो, अवाम के सामने सिर्फ भलाई की सूरत में आओ। जब वो तुम्हारा तर्ज अमल देखेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि असल में शरफ व फजीलत वाले हम ही हैं, फिर वो खुद से हमारी तालीमात की तरफ रुजू करेंगे। ये नसीहतें सिर्फ इमाम के असहाब के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए हैं। इमाम ने चाहा कि आपके असहाब अपने अल्फाज से पहले अपने अमाल के ज़रिए लोगों को फ़ज़ाइल की तरफ खामोश दावत दें, इस्लाम के सही मुबल्लिग साबित हों, ज़बान से नहीं अपने अमल के ज़रिए तबलीग करें। इमाम ने फरमाया, नेकी की हिदायत दो, बदी से रोको, यानी अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करो, क्योंकि ये ना तो मौत को करीब करता है ना ही रिस्क को दूर करता है। इमाम फरमाते, अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, और उसके लिए वो ना चाहो जो तुम अपने लिए नहीं चाहते। इससे मुराद सिर्फ चंद चीज़ें नहीं हैं, मसलन लिबास, खुराक वगैरह, बल्कि हर हर मामले में मोमिनीन और मुस्लिमीन के लिए वही चाहा जाए जो इंसान ख़ुद अपने लिए चाहता है। मसलन ये कि हर शख्स चाहता है लोग उससे अच्छे अखलाक से पेश आए, तो ख़ुद भी दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया जाए। हर शख्स अपने लिए इज्जत चाहता है तो दूसरों का भी एहतराम किया जाए। हर कोई अपने लिए नेमतें चाहता है तो दूसरों की नेमतों से हसद ना किया जाए। कोई नहीं चाहता कि मुझे धोखा दिया जाए, मेरे साथ खयानत की जाए, तो दूसरों के साथ भी ये बुराइयाँ ना की जाएँ। इमाम इसकी यूँ ताकीद फरमाते कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ जसद वाहिद की हैसियत रखता है, यानी एक जिस्म की तरह होता है। जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म को उसका एहसास हो जाता है। मोमिन मोमिन का भाई होता है, वो उसकी आँख है और उसको रास्ता बताने वाला है, ना उसके साथ खयानत करता है, ना उस पर जुल्म करता है, और ना ही उसको धोखा देता है, और ना वादा खिलाफी करता है। इमाम कोशिशें फरमाते कि जहनों को पाकीज़ा बनाकर फसाद और लाकानूनियत को ख़त्म करें, ताकि जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में जो मुश्किलात पेश आएं उनका मुकाबला करने के लिए ऐसे दिल तैयार हो जाएं, ऐसे जहन तैयार हो जाएं जिनमें ना कमज़ोरी और ना खौफ का गुज़र हो। जैसा कि इमाम के इस फरमान से ज़ाहिर हो रहा है कि अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर ना मौत को करीब करता है ना रिस्क को दूर करता है। बहरहाल इमाम ने चाहा कि उनके मुबल्लिग अपने कौल को अमल से मिलाए रखें और उनके अकवाल उनके आमाल ही की एक शक्ल हो, क्योंकि ये जुल्म का मुकाबला करने का सबसे ज़्यादा मौसर और नतीजा खेज ज़रिया है। इखलाक और नेक आमाल से मुतालिक इमाम ने जो बयान फरमाया है उसको बयान करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इमाम ने चाहा कि मुबल्लिग अपने कौल को अमल से मिलाए रखें जबकि हमारे कौल और अमल में तजाद है, मगर बयान इसलिए कर रहे हैं कि इमाम की अहादीस लोगों तक पहुँचें और उनकी अहादीस की बरकत से खुदा हमें भी इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और खुदा हमारे जाहिर से ज़्यादा हमारे बातिन को अच्छा बना दे, संवार दे। इमाम ने फरमाया कि तुमको गरीबों से मोहब्बत करना चाहिए, जो कोई उनको हकीर समझेगा और उन पर बड़ाई जताएगा वो अल्लाह के दीन की राह से भटक जाएगा, क्योंकि हमारी जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए कि मुझको अल्लाह ने गरीबों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, और जान लो कि जो कोई किसी को भी हकीर समझेगा अल्लाह उस पर नफ़रत नाजिल कर देगा, यहाँ तक कि सब लोग उससे नफ़रत करने लगेंगे। आगाह रहो कि अल्लाह की नफ़रत बड़ी सख्त होती है, बस तुम अपने गरीब भाइयों के लिए अल्लाह से डरते रहा करो, तुम पर उनका यह हक़ है कि उनसे मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी को उनसे मोहब्बत का हुक्म दिया है, फिर जिसने उससे मोहब्बत ना की, जिसकी मोहब्बत का खुदा ने हुक्म दिया है, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, और जिसको इस हालत में मौत आ गई तो वो पिछले लोगों की तरह गुमराही पे मरा। हम अपनी ज़िंदगी को इन अकवाल की रोशनी में ले जाकर देखें तो तजाद ही तजाद नज़र आ रहा होता है। इमाम फरमा रहे तुम लोग गुरूर से बचे रहना, क्योंकि बड़ाई अल्लाह की चादर है, जो शख्स अल्लाह की चादर पे हाथ डालेगा तो खुदा उसको दुनिया में बर्बाद कर देगा, कयामत के रोज़ भी उसको रुसवा करेगा। तुम लोग एक दूसरे पे जुल्म करने से बचे रहना, क्योंकि जो कोई जुल्म करता है अल्लाह उसके जुल्म को उसी पर पलटा देता है। एक दूसरे से हसद करने से बचे रहना, क्योंकि कुफर की जड़ हसद है। एक दूसरे की मदद करते रहना। अच्छा, ये जितने अल्फाज आए गुरूर जुल्म हसद, इनका हमने जिक्र तो बहुत सुना है, लेकिन इनके बारे में हमारे पास मालूमात नहीं, इनकी तफसीलात नहीं जानते, इनकी अलामात नहीं जानते, और यही वजह है कि लोग इन बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और वो समझ भी नहीं पाते। इन रूहानी नफसानी अमराज के बारे में उलमा ने बहुत किताबें तहरीर की हैं और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस और रिवायात मौजूद हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, और उनको पढ़ने के बाद इंसान अपना मुहासबा करे, खुदा से दुआ, मासूमीन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल के साथ मुहासबा करे, क्योंकि शैतान इंसान को धोखा देता रहता है और इंसान अपने आप से मुतमईन रहता है। जिस्मानी जो अमराज हैं और जो दुनिया की मुश्किलात हैं, या तो वो ख़त्म हो जाती हैं या इंसान ख़त्म हो जाता है और उसकी जान छूट जाती है, मगर ये जो रूहानी अमराज हैं इस दुनिया से ज़्यादा आलम आखरत में मुसीबत का बाइस साबित होंगे, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सूरह शम्स में 11 कस्मों के बाद खुदा ने फरमाया, कद अफलहा मन ज़क्काहा, बेशक कामयाब हुआ जिसने इसे पाक किया, यानी नफ्स को पाक किया, तस्किया है नफ्स को, फलाह और कामयाबी का रास्ता बताया है। इमाम ने यह भी फरमाया कि देखो, तुम में से कोई अपने परेशान हाल मुसलमान भाई को तंगी में नहीं डाले, क्योंकि हमारे बाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान को किसी परेशान हाल मुसलमान पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। इमाम फरमाते हैं, उस पर नज़र ना रखो जो मालो मता में तुमसे बड़ा हुआ है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, सूरह तौबा आयत 55। 55, ए रसूल, उन लोगों के माल और औलाद आपको हैरत में ना डालें। सूरह ताहा आयत 131, आप अपनी आँखें उस तरफ ना करें जो हमने दुनियावी ज़िंदगी की चमक में से बाज़ गिरोहों को अता किया है। इमाम ने फरमाया, अपनी माश के मामले में यानी रोज़ी के मामले में उस तरफ ना देखो जो तुमसे बढ़तर है, बल्कि उसकी तरफ देखो जो तुमसे कमतर है। इस तरह तुम उसी पे कनात कर सकोगे जो अल्लाह ने तुमको दिया है, और ये भी मुमकिन है कि इस तरीक़े से अपने रब से ज़्यादा पाने के मुस्तहक हो जाओ। ये कहा जाता ना कि अपने से नीचे देखो, यानी अपने से कम हैसियत लोगों को इंसान देखता है तो उसको अपने हालात पे सब्र आ जाता है। लोगों जब दूसरों की ज़िंदगी तरफ लोग नज़र करते हैं तो ये सुनने में आता है कि फ़लाँ को कोई परेशानी नहीं, फ़लाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, जबकि वो दीनदार भी नहीं, और हम तो दीनदार हैं, गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम परेशानी में मुब्तला हैं। एक बात तो ये कि जब दूसरों की ज़िंदगी से मुवाज़ना करता है इंसान अपनी ज़िंदगी अपने हालात का, तो सवाल यह है कि वो गैर दीनदार अफराद की तरफ निगाह क्यों करता है, गुनाहगारों और कुफ्फार की तरफ क्यों देखता है? लोग कहते हैं कि कुफ्फार तो ऐश में, वो तो ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान मोमिनीन कुफ्फार से क्यों अपना मवाजना कर रहे हैं? अम्बिया और अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ निगाह क्यों नहीं करते? अल्लाह के नेक और सोहले बंदों के हालात की तरफ निगाह क्यों नहीं करते? हम मुसलमान हैं, हम जिन्हें अपना रहबर और पेशवा मानते हैं और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम उनकी तरफ निगाह करें, तवज्जह दें, तो हम देखेंगे कि जो अल्लाह के जितने ज़्यादा मुकर्रब बंदे हैं, उतने ही उन्होंने मसाइब उठाए, सख्तियों में ज़िंदगी गुजारी, सबसे बढ़कर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि महबूब खुदा हैं। सबसे ज़्यादा मुसीबतें नबी करीम की हैं और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम की हैं। तो हम जिनके मानने वाले हैं, अगर उनकी ज़िंदगियां आराम में गुजरी होती, फिर तो हमारी हैरान की हमारा सवाल दुरुस्त होता कि उनकी ज़िंदगी तो आराम में गुजरी, हम क्यों मुश्किलात में हैं? जबकि ऐसा नहीं है, उनकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किलों में गुजरी। और सिर्फ हम उनके ही हालात पर तवज्जो ना दें, बल्कि जिन लोगों ने अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की, उनका साथ दिया, अगर हम उनकी ज़िंदगी के हालात पे तवज्जा दें, मसलन जनाब अबू ज़र गफ़ारी के हालात देख लें, तो अब कोई कहेगा कि अहले बैत तो मासूम हैं, हम कहाँ वो कहाँ? और जनाब अबू ज़र के लिए कहा जाएगा कि उनकी बात अलग है, वो नबी के साथ रहे। नबी के साथ तो और बहुत सारे लोग भी रहे जो नबी को अज़ियत पहुँचाते रहे। नबी के साथ रहना इस बात की दलील नहीं कि जो नबी और अहले बैत है, नबी के साथ रहेगा वो नेक होगा। लेकिन बहरहाल एक ऐसी मिसाल बयान करते हैं जो बेमिसाल है, उसके बाद हमारे पास कोई उजर बाकी नहीं रहेगा। और वो आला तरीन मिसाल जनाब इब्राहिम ज़कज़की की है, उनकी मुश्किलात को देखें। ये तो था एक अकली जवाब कि जिन हस्तियों को लोग अपना पेशवा मानते हैं, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम को, जिनको नमूना अमल करार दिया गया है, उनकी ज़िंदगियों को देखें। वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, रहें और उन पर मुसीबत भी ना आए, उनकी ज़िंदगी क्यों अच्छी लगती है? इमाम फरमाते हैं कि जब किसी मुसीबत से दो चार हो जाओ, तो अपनी मुसीबत का रसूल अल्लाह के मसाइब से मवाजना कर लिया करो। देखें, यही बात बयान की जा रही है कि हम अपने पेशवाओं की ज़िंदगी को देखें। आगे इमाम फरमाते हैं, क्योंकि मखलूक़ खुदा में से रसूल अल्लाह की मानिंद मुसीबत किसी पर कभी नहीं पड़ी। जो खुदा के नाफरमान हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी की तरफ निगाह करने से खुदा ने मना किया है। सूरह हिजर आयत नंबर 88 खुदा फरमाता है, और हमने इन कुफ्फार में से कुछ लोगों को दुनियावी नेमात दी हैं, आप उनकी तरफ निगाह उठाकर ना देखें। क्या वजह है, क्यों नहीं देखें, क्यों मना किया गया है? दूसरा सवाल ये कि लोग गुनाहों के बावजूद आराम और आसाइश में क्यों हैं? तीसरा सवाल ये कि हम पर मुश्किल या परेशानी क्यों आती है? इन सब के जवाबात मुख्तसरन ये हैं। सूरह आले इमरान, परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, वो हरगिज़ ये ख्याल ना करें कि हमने उनको जो मोहलत और फारिगुल बाली दे रखी है, उनके हक़ में बेहतर है। हमने मोहलत और फारिगुल बाली सिर्फ इसलिए दे रखी है ताकि वो खूब गुनाह कर लें, उनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। खुदाए मेहरबान बंदों को मोहलत देता है, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पशेमान होकर तौबा करें। इस किस्म की मोहलत साहिबान ईमान को फ़ायदा पहुँचाने के पेश नज़र है। इसके बरक्स कुफ्फार और सरकश लोगों के लिए मोहलत की मुद्दत में क्या होता है? गुनाह पर गुनाह का इजाफा होता है, तो अचानक उन पर गज़ब इलाही नाजिल हो जाता है। काफिर और फाजर की तवील उम्र, कामयाब ज़िंदगी, आसाइश के असबाब की फरहमी अगरचे बज़ाहिर उसके लिए खुशी का बाइस है और वो अपने आप को बढ़तर समझता है, लेकिन दर हकीकत इस किस्म की ढील कहर व गज़ब इलाही की एक किस्म है। कहर व गज़ब और अज़ाब इलाही की एक किस्म है। खुदावंद आलम फरमाता है, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, हम उन्हें बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम में ले जाएंगे, उन्हें खबर भी नहीं होगी। ये मकर इलाही, तदबीर इलाही की एक किस्म है, जिसे इस्तदराज कहते हैं। इसके लुग़वी मायने हैं, कोई शख्स कदम ब कदम बुलंदी की तरफ जाए या नीचे उतर आए। बाज़ लोग, सिर्फ कुफ़ार की बात नहीं हो रही है, बाज़ लोग जिनमें सरकश अफराद भी शामिल हैं, सिर्फ कुफ़ार ही नहीं, नाफरमान और सरकश भी शामिल हैं, गुनाह की वजह से वो लोग कहरे इलाही के मुस्तहक हो गए होते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है, एक नए गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। खुदा भी गुनाह के बाद उनको ताज़ा नेमत अता करता है। ये लोग शर्मिंदा होने, तौबा करने के बजाय गुनाह को ही फरामोश कर देते हैं और गुनाह पर गुनाह करते हैं। ऐसे सरकश नाफरमान अफराद के बारे में खुदा का फरमान है, हम उन्हें बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम में ले जाएंगे, उन्हें खबर भी नहीं होगी। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बी आयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यालमून। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे को खैर फराम करना चाहता है, वो बंदा गुनाह करता है, खुदा उसे मुसीबत में मुब्तला कर देता है ताकि वो होशियार हो जाए कि ये मुसीबत मेरे किसी गुनाह के सबब है। बस वो तौबा इस्तग़फ़ार करता है। इसकी तफसीलात किताब गुनाहाने कबीरा की पहली जिल्द में देखी जा सकती हैं। हमने जो बयान करा है वो भी किताब गुनाहाने कबीरा की पहली जिल्द से ही मुख्तसरन बयान किया है। इमाम ने फरमाया कि जान लो तुम्हारी इबादत गुजारी इससे ज़्यादा फ़ायदे बख्श नहीं कि तुम हराम कामों से बचे रहो। मोमिनीन को ज़रर पहुँचाने से परहेज़ करो। ज़िंदगी में अच्छे अखलाक से बेहतर कोई चीज़ नहीं। ज़ैद इब्ने शहाम ने इमाम से रिवायत की कि इमाम ने फरमाया, तुम अपने दरमियान में से जिस किसी को देखो कि वो मेरी अतात करता है, उसको मेरा सलाम पहुँचा दो। मैं तुमको अल्लाह की अतात, अपने दीन में खौफ खुदा, अहकाम में इज्तिहाद, ज़बान की सच्चाई, अमानत के अदा करने, सजदों को तूल देने और पड़ोसी से अच्छा सलूक करने की नसीहत करता हूँ, क्योंकि रसूल अल्लाह यही अहकाम लेकर आए थे। जिसने भरोसा करके अमानत रखवाई हो उसकी अमानत वापस दिया करो, चाहे वो नेक हो या बद हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुई धागा तक वापस करने की हिदायत फरमाते थे, यानी अमानत चाहे छोटी हो या बड़ी हो वापस करो। अपने अकरबा से अपनी कराबत का पास करते रहो, यानी उनके मरीज़ों की इयादत करो, उनके जनाजों में शिरकत करो, हुकूक अदा करते रहो। अगर तुम में से कोई शख्स दीन के बारे में खौफ इलाही रखता हो, कौल में सच्चा हो, अमानतें अदा करता हो, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आता हो, फिर कहा जाए कि ये जाफरी है तो ये बात मुझको अच्छी लगती है और इससे मुझको मुसर्रत हासिल होती है। अगर ऐसा ना हो तो दिली तकलीफ़ होती है, दिली तकलीफ़ होती है और शर्म भी आती है। इमाम ने फरमाया, अगर तुमको पसंदीदा शय हासिल हो जाए तो बकसरत अल्लाह की हम्द करो, और अगर नापसंदीदा चीज़ दरपेश हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत से पढ़ो। अगर रोज़ी मिलने में देर हो जाए तो कसरत से अस्तग़फार करो। अल्लाह पर भरोसा रखो, मोमिन बन जाओगे। जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर मुतमईन रहो, गनी हो जाओगे। गनी के मायने दौलतमंद, अमीर के भी हैं और बेनियाज के भी हैं। और कहा गया कि असल में गनी वो नहीं जिसके पास दौलत की कसरत हो, बल्कि असल में गनी वो है जिसका नफ्स मुतमईन हो। इमाम ने फरमाया, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, मुस्लिम बन जाओगे। बदकार की सोबत इख्तियार ना करो, वरना वो तुमको भी बुरे काम सिखा देगा। अपने मामलात में उन लोगों से मशवरा करो जो अल्लाह से डरते हैं। अपने नेक अमल पे भरोसा करने वाला आखरत में बर्बाद हो जाएगा। देखें, इंसान के नेक अमाल की अल्लाह की बारगाह में कोई अहमियत नहीं है। परवरदिगार आलम हमारे अमाल को कबूल कर ले, या उसका एहसान है। हम जो नेक अमल भी अंजाम दे रहे होते हैं उसमें भी ना जाने कितनी खराबियां होती हैं। तो अपने नेक अमाल पे भरोसा नहीं करना है, भरोसा अल्लाह पे करना है और अल्लाह से ये उम्मीद लगानी है, परवरदिगार जैसा भी मेरा नाकिस अमल है तू अपनी रहमत से, अपने फ़ज़ल व करम से इसको कबूल फरमा। और इमाम ने फरमाया कि और वो शख्स भी निजात नहीं पाएगा जो रहमत खुदा की उम्मीद में गुनाहों पर कायम रहता है। इंसान ये सोच के कि अल्लाह रहमान और रहीम है गुनाह करता रहे, तो ऐसा शख्स भी निजात नहीं पाएगा। इमाम ने फरमाया, लोगों के सामने अपने सदक़ात खैरात मत दिया करो। लोगों के सामने इसलिए सदक़ात खैरात मत दिया करो कि तुमको नेकूकार कहें। अगर तुम ऐसा करोगे तो अपना अजर खो दोगे। जाहिर सी बात है कि सदक़ात खैरात अल्लाह की खातिर होने चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। इमाम ने फरमाया कि ये होना चाहिए कि तुम दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना होने पाए। बस खुदा के लिए तुम पोशीदा तौर पर सदक़ात दोगे, खुदा तुमको ऐलानिया तौर पर उसकी जजा देगा। रावी का बयान है कि मैं इमाम जाफ़र इब्ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपके फ़र्जंद हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उस वक्त इमाम ने फ़रमाया, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से फ़रमा रहे हैं छठे इमाम, ऐ मेरे बेटे मेरी ये वसीयत कबूल करो और उसको याद रखो। अच्छा, ज़ाहिरन तो इमाम अपने फ़र्जंद से मुखातिब हैं, लेकिन जो वसीयत इमाम ने फ़रमाई वो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हैं, क्योंकि बाबुल हवाइज इमाम मूसा इब्ने जाफ़र अलैहिस्सलाम तो बेशक मासूम हैं। हम सुनते वक्त जहन में रखें कि इमाम हमें नसीहत फरमा रहे हैं। क्या फरमाया इमाम ने? इमाम फरमाते हैं कि अगर इस पर अमल पैरा रहोगे तो कामयाब ज़िंदगी गुजारोगे और तुम्हारा अंजाम भी काबिल तारीफ़ होगा। ऐ बेटे, जो अल्लाह के दिए हुए पर खुश रहेगा वो तवंगरी हासिल करेगा, जो अल्लाह के दिए हुए पर मुतमईन नहीं होता वो गोया अल्लाह के फ़ैसले को गलत कहता है। जिसको अपनी गलती छोटी लगती है उसको दूसरे की खता बहुत बड़ी मालूम होती है, लेकिन जिसको दूसरे की खता छोटी नजर आए उसको अपनी खता बड़ी दिखाई देती है। ऐ बेटे, जो दूसरे का पर्दा चाक करेगा खुद उसके घर की पोशीदा बातें भी आशकार हो जाएंगी। बहुत अहम बात है ये, दूसरों के पर्दे चाक करने से इंसान के अपने घर की पोशीदा बातें भी जाहिर हो जाएंगी, इंसान इस बात को जहन में रखे। जो जुल्म की तलवार खींचेगा उसका गला भी उसी से कट जाएगा। जो अपने भाई के लिए गड़ा खो देगा वो खुद भी उसी में गिरेगा। जो बुरी जगहों पर जाएगा वो मोरिद इल्ज़ाम करार पाएगा। ऐ बेटे, लोगों पर इल्ज़ाम लगाने से बाज रहना, फिर तुम भी इल्ज़ाम लगने से बचे रहोगे। हमेशा हक बात कहना, चाहे वो तुम्हारे हक में हो या तुम्हारे खिलाफ़, और किताबे खुदा की तिलावत करते रहना, सलाम ऐलानिया करना, नेकी का हुक्म देते रहना। जो कतई रहमी करे उसके करीब होना, और जो सवाल करे उसको ज़रूर देना। देखो, लोगों के ऐबों को जाहिर ना करना, क्योंकि ऐसा करने वाला खुद उन्हीं ऐबों का निशाना बन जाता है। एक मकाम पर इमाम ने फरमाया, मेरा महबूब भाई वो है जो मेरे ऐबों की निशानदही करता है। इमाम मासूम है, ऐब से पाक है। फिर वही बात कि हमें समझाया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई हमारी बुराई की निशानदही कर दे तो हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं। मगर यहाँ पे चंद बातों की वजाहत भी ज़रूरी है। एक तो ये कि ऐब बताने वाला मुखलिस व तन्हाई में बात करे और उसकी नीयत दूसरे की दिल आज़ारी करना या तौहीन करना ना हो, और ख़ुद पसंदी भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मोमिन की भलाई की नीयत से उसकी इसलाह के लिए बुराई की निशानदही की जाए। और ये बात जहन में रखी जाए कि इंसान अपने आप को, अपनी नीयत को, अपने इरादों को एक दूसरे से छुपा सकते हैं, मगर खुदा से नहीं छुपा सकते। यानी अगर मोमिन के लिए किसी शख्स के लिए दिल में बोक्स, कीना, तौहीन का इरादा रखते हैं, या ख़ुद को बढ़तर और सामने वाले को कमतर समझ रहे हैं और ज़ाहिरन मुखलिस बनकर उसको नसीहत कर रहे हैं, तो खुदा जानता है जो नीयत होगी उसी के हिसाब से सिला भी मिलेगा। इमाम ने फरमाया, तीन आदमियों से खबरदार रहो, खयानतकार और जालिम और चुगलखोर। जो तुम्हारे लिए खयानत करेगा वो तुमसे भी खयानत करेगा, जो तुम्हारे लिए किसी पे जुल्म करेगा वो तुम पे भी जुल्म करेगा, जो तुमसे किसी की चुगलखोरी करेगा फिर किसी से तुम्हारी भी चुगली करेगा। और किताब है उठो अंसार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। इस किताब में इमाम का फरमान है कि इमाम ने फरमाया, जो चाहता है उसका शुमार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। इमाम ने फरमाया कि जो चाहता है उसका शुमार इमाम के अंसार में हो, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अंसार में हो, तो वो गुनाहों को तर्क करने के साथ साथ शुबहात से भी दूरी अख्तियार करे। यानी वो काम जिसमें हराम का शुबा उसे अंजाम नहीं दे, अगर किसी जगह जाने में हराम में मुब्तिला होने का शुबा हो वहाँ नहीं जाए, हर हर काम में जिसमें शक व शुबा पाया जाता हो उसका इरतिकाब ना करे। अगर कोई कहे मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ गुनाह हो रहा होता है मगर मैं गुनाह नहीं करता, तो वो ये जान ले कि शैतान आएगा और आराम से उसे भी गुनाह में धकेल देगा। फजील इब्ने यसार, जो इमाम के जलील कदर असाब में से हैं, कहते हैं कि हम एक जगह चंद शिया इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। इमाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम बैठकर हमारे बारे में गुफ्तगू करते हो? सवाल पूछा इमाम ने। तो वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की, जी हाँ ऐ फर्जंदे रसूल, आप पर कुर्बान जाऊँ। तो इमाम ने फरमाया, मैं इन मजालिस को दोस्त रखता हूँ। मजालिस का मतलब वो मुहर्रम वाली मजालिस नहीं है, बल्कि जहाँ भी शिया या मोमिनीन इकट्ठे होकर बैठ जाएँ और ज़िक्र इमाम कर रहे हों, ज़िक्र अहले बैत कर रहे हों, दीन की तालीमात एक दूसरे को दी जा रही हों। इमाम ने फरमाया, मैं इन मजालिस को दोस्त रखता हूँ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी अपने जद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरह हैं। अगर इमाम ऐसी मजालिस को देखें तो फरमाएंगे, मैं इन मजालिस को दोस्त रखता हूँ, हमें चाहिए कि हम जमा हो जाया करें और उनके बारे में गुफ्तगू करें। मासूमीन की खुशनूदी इसी तस्करे में है। इसी रिवायत में है कि इमाम ने फरमाया कि ऐ फ़ज़ील, हमारे अमर को ज़िंदा रखो। जो हमारे अमर को ज़िंदा रखेगा खुदा उस पर रहम फरमाएगा। ये जो फरमाया कि अमर को ज़िंदा रखो, यानी फ़िक़ी अहकाम, कुरान व मारिफ को ज़िंदा रखना, यानी इस्लाम को ज़िंदा रखना, अहकाम और आइम्मा की विलायत का ज़िंदा रखना इन्हीं मजालिस की वजह से है। जब इस्लाम इन मजालिस के साथ वाबस्ता है तो ऐसी मजालिस का तश्कील देना वाजिब किफ़ाई करार पाएगा। मगर कैसी मजालिस? वो मजालिस जिनमें मोमिनीन के लिए नसीहत हो, चाहे वो मुहर्रम में बरपा की जा रही हो या मुहर्रम के अलावा बरपा की जा रही हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बाग़ों में जाओ, तफरी करो, उनसे बहरावर हो। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत के बाग़ क्या हैं और कहाँ हैं? फरमाया, मजालिस ज़िक्र, यानी याद व नसीहत की मजालिस, मजालिस बपा करो जिनमें याद खुदा और अहले बैत इस्मत तो तहारत की याद हो। इमाम का ये फरमान कि जो हमारे अमर को ज़िंदा करेगा खुदा उस पर रहमत करेगा। इमाम हर उस शख्स के लिए जो मजालिस करवाएं जिनमें आइम्माए ताहरीन के अमर को ज़िंदा किया जाता है, इमाम उन सब के हक़ में दुआ फरमाते हैं और इमाम की दुआ रद्द नहीं हो सकती। मगर याद रखा जाए अमर को ज़िंदा करना अहम बात यह है। आइम्माए अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक मुसलसल होता रहे, अमर को ज़िंदा किया जाता रहे, हम खुद भी उनके हालात ज़िंदगी से आगाही हासिल करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नाका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहित ताहिरीन।